ओम शांति। परामादरणीय भाई जी ने वैसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हम सबको दे दिए हैं। ये हमारी विद्यालय की बहुत बड़ी शोभा है कि जब भी ब्राह्मणों में कुछ प्रश्न उठते हैं तो हमें लगता है कहाँ जाए। तो पहला नाम किसका आता है? भाई जी का आता है। ऐसे आध्यात्म जगत के मास्टर ज्ञान सूर्य भाई जी से जब भी हम लोग मिलते हैं तो एक तो भाई जी के पास समय बहुत रहता है, इतना बिजी होते हुए भी कभी नहीं कहते मैं बिजी हूँ। और इस विद्यालय की आप चैतन्य मंदिर के ऐसी मूर्ति हैं जिसके पास जो भी आता है भाई जी के पास वो कभी खाली नहीं जाते, कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं भाई बहनों के, हम अभी भाई जी से उनका उत्तर चाहेंगे। किसी ने कहा है भाई जी कि साकार बाबा के समय की आत्माएं बाबा के साथ मिलन किए, उसके बाद अव्यक्त बाप दादा से प्रभु मिलन का अनुभव किए, वर्तमान समय जो ज्ञान में आने वाली आत्माएं हैं जो अव्यक्त पार्ट भी अब पूरा हो गया, उसके बाद जो आत्माएं आ रही है
ऑनलाइन
जो ऑनलाइन वो कैसे प्रभु मिलन करे,
उसके हमने कई विधि आपको बता दी। ऑनलाइन बच्चों की लाइन क्लियर रहे ऊपर से, बस मिलन होता रहेगा। मैंने कुछ बातें बताई और कुछ जरूरी हैं बातें। देखिए, कोई ऐसा न सोचे कि साकार में जो साथ रहे वो तो बहुत बड़े हो गए, अव्यक्त मिलन का सुख जिन्होंने लिया वो भी बहुत बड़े महान हो गए, हम पीछे रह गए, ऐसा कुछ नहीं होता। साकार बाबा के समय के भी कई लोग ढीले ढाले रहे, उन्हें महत्व ही नहीं था कि भगवान से मुरली सुनते हैं, कई लोग बहुत आगे बढ़ गए। अव्यक्त बाप दादा का समय भी बहुत सुंदर गुजरा, मैं तो याद करता हूँ, तो क्योंकि मैं तो क्लास कराई है हर मिलन से पहले हजारों बार और सारा सुख लिया है मैंने, मेरे लिए तो वो सुख सात चारों युगों तक अच्छी तरह चलता रहेगा। लेकिन उसमें से भी कई ढीले होकर निकल गए, छोड़ दिया बाबा को। इम्पोर्टेंट बात है हम कितने धारणा युक्त हैं, हम कितने मजबूत हैं अपने मार्ग पर, हम संशय को साथ लेकर तो नहीं चल रहे हैं, हमने अपनी प्योरिटी को स्ट्रांगली पकड़ा है, इन बातों की बड़ी वैल्यू है। हमें बाबा के ज्ञान रत्नों का संपूर्ण महत्व है, या हम अपनी ही समस्याओं में, अपनी गृहस्थी में, संसार के प्रभाव में, संसार के आकर्षणों में रहते हैं अभी भी। तो ये सत्य है, मेरे पास आप में से भाई बहने कुमार कुमारियां गृहस्थी सब आते हैं, मैं पूछता हूं उनके अनुभव थोड़े में सुना देते हैं। एक साल से ज्ञान में है पर जीवन में मजा आ गया, और उनके बोल से लगता है वो अभी कहीं विचलित नहीं होंगे। का एक साल में ही हमने अपनी स्थिति को इतना अच्छा बना दिया, योग बहुत अच्छा हो गया कि हमें लगा, वो तो सभी कहते हैं कि पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन पहले आ जाते तो ढीले रहते। अभी संकल्प ने के लेट आए हैं, जरा कदम तेज कर दिए हैं ना, लेट आए हैं तो सब कुछ प्राप्त करना। तो जब आए, हिंदी में क्या कहावत है, जब जागे तब हुआ सवेरा, जग गए हैं, जीवन में सुनहरा सवेरा आ गया है। अब इस प्रकाश का, अब इस प्रभु मिलन का, उसकी गाइडेंस का फायदा उठाएं, तो आपको लगेगा नहीं पीछे रह गए या हमारा मिलन नहीं होता। मैंने कहा रोज होगा, जब चाहे होगा, दिन में हजार बार होगा, जब आपको उसको बुलाएंगे, बांध लेंगे ना दो चीजों में, कौन से, प्यार और अधिकार, बस आप कहेंगे आ जाओ और उसको सामने पाएंगे।
जी, जब हम ज्ञान सरोवर में मधुबन में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि रोज हर घड़ी प्रभु मिलन हो रहा है, लेकिन जब लौकिक स्थान पर जाते हैं, कारोबार में लग जाते हैं, तो वो अनुभूति कायम नहीं रहती है।
हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसके उत्तर सभी को जानने ही चाहिए। देखो, यहाँ तो अलग ही चीज है, दोनों स्थान पांडव भवन, ब्रह्मा बाबा जहां रहे, महान तपस्वी, उन जैसा तपस्वी तो चारों युगों में कोई होता ही नहीं। मामा जगदम्बा सरस्वती महान तपस्वी, अनेक दादियां और महान योगी वहां रहे। ज्ञान सरोवर जब बना तो यहां पता कौन रहते थे बनने से पहले? भालू, भेड़िए और चीते। यहां कोई आता नहीं था, ये सड़के वड़के कुछ नहीं थी, ये गांव हल्का सा था, पीछे से रास्ता था, उबड़ खाबड़, कोई आने का साहस नहीं करता था यहां, दिन में भी नहीं, रात को तो छोड़ो। रात को अगर किसी को जाना ही है तो आग वाग साथ लेके, लाइट लेके अच्छी फिर चलते थे, भालू चीते ना आ जाएं। अभी भी हैं यहाँ, थोड़े पीछे हैं, दूरी पर हैं, लेकिन हमें हमारे समीप ही हैं। यहाँ वाइब्रेशंस बनाए गए। कैसे बनते हैं वाइब्रेशंस? हमारी स्थिति से, हमारे योग से, हमारी प्योरिटी से, हमारी श्रेष्ठ भावनाओं से, आत्मिक दृष्टि से वाइब्रेशंस बनते हैं। और आज हम खुद कह सकते हैं, जबकि हम यहां रहते हैं, मैं नीचे भी रहता हूं और यहां भी, दोनों के वाइब्रेशंस में बहुत बड़ा अंतर। नीचे भी सवेरे योग करते हैं, यहां भी करते हैं, दोनों की अनुभूतियों में महान अंतर। ये मैं आपको इसलिए सुनाया, आपके हाथ में है अपने घर में कर्म क्षेत्र पर अपने अनुसार सुंदर वाइब्रेशंस बनाना। हमारे ऊपर बाहरी दुनिया का इफेक्ट तब होता है जब हम कुछ भी अभ्यास नहीं करते, हमारे वाइब्रेशंस कमजोर होते हैं। देखो, हमसे निरंतर किरणें फैलती हैं, वो किरणें अगर पावरफुल हैं तो कलयुग की किरणों को आने ही नहीं देंगी। इसलिए ऐसा प्लान बनाना सिंपल, मैंने ऐसे रेडी होने की प्रैक्टिस बताई, 5-7 बार बाबा का आह्वान करने की आदत डाल लो अपने घरों में, अपनी दुकानों में, जो खेती करते हो तो खेतों में बाबा को बुलाओ, बाप दादा आ गए, खड़े हैं, उनके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं चारों ओर। स्वमान के पॉइंट चुन लो, उनका अभ्यास करते रहो, और जो धारणाएं हैं सुंदर सी, बोल अच्छे, घर में झगड़ा ना हो, घर में शांति रहे, सुखों का माहौल रहे, सब एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं, प्यार ही प्यार हो घरों में, वो वाइब्रेशंस आपको बनाना है। और वो वाइब्रेशंस आपको ऐसे ही सुंदर अनुभव कराएंगे। तो याद रखेंगे, हम मास्टर क्रिएटर हैं, मास्टर रचयिता, वाइब्रेशंस बनाना हमारे अपने हाथ में है।
जी भाई जी, कई बार ब्राह्मण जीवन में लोभ आने लग जाता है, गाड़ी हो, मकान हो, बंगले हो, तो वो जो परमात्मा मिलन की अनुभूति जो होने लगती है उसमें कमी आने लग जाती है।
संसार की तरफ भागेंगे तो प्रभु की तरफ भागना ढीला पड़ ही जाएगा। लेकिन मैं इसमें दो चीजें कहूंगा आपको, क्योंकि ये बात सुन के कई लोग सोचते हैं क्या करें, कंपटीशन बहुत है दुनिया में, हमारे बड़े भाई का घर बहुत सुंदर बन गया है, हमारा सीधा सा है, बच्चे कहते हैं क्या पापा तुम ब्रह्मा कुमारियों में चले गए, वैरागी बन गए, अच्छा घर ही नहीं बनाते। आती है ना भाइयों को समस्या, मेरा फलाना फ्रेंड बिजनेस में बहुत आगे बढ़ गया है, हम ढीले ढाले रह गए, बाबा के बने तो इच्छाएं छोड़ दी, ढीले रह गए। थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने विचारों को, इच्छाएं तो हमें छोड़ना है पर आवश्यकताएं जरूर पूर्ण करनी है। दो शब्द हैं ये, इच्छाएं और आवश्यकताएं। इच्छाओं का तो कहीं अंत नहीं है मनुष्य के, वो आज लाख लाख कमाना चाहता है तो कल करोड़ कमाना चाहेगा, उसमें भी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए संतुष्ट आत्मा बनना तो उत्तम उत्तम चीज है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते रहते हैं, मैं सुनता हूं कभी कभी उनके शब्द, जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होना है। इसका दूसरा मीनिंग है अर्थात निरंतर प्रोग्रेस करते रहना है। ये नहीं हो गई बस अब शांत, लेकिन हमारा हुआ है भगवान से मिलन। ठीक है, आप धन भी कमाओ, आप घर भी बनाओ, आपको कार चाहिए कार भी लो, क्योंकि आजकल समय बदल चुका है। मैं नहीं कहूंगा आप साइकिल में ही चलो दिल्ली में, इधर से उधर जाने में 4 घंटे लगेंगे। मैं भी दिल्ली में रहा हूँ 68 में, साइकिलें ही होती थी और तो कुछ होता ही नहीं था किसी के पास। स्कूटर होना माना कोई बड़ा आदमी है, और कार होना तो ये कार वाला है प्रसिद्ध हो जाता था। लेकिन अब वो समय बदल गया है, आपको जो सुविधाएं चाहिए उन्हें अवश्य प्राप्त करें, लेकिन उनको बनाने में उसको कमाने में अपने को इतना न उलझा दो कि ईश्वरीय खजाने मिल ही न पाए। वर्तमान में भी कमाना है और 84 जन्मों की कमाई भी जमा करनी है, दोनों को साथ लेकर चलो। और आप ये अच्छी तरह जान लो, अगर आपकी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो धन भी आपके पीछे पीछे आएगा। डोंट फॉरगेट इट, कभी भूलना नहीं। स्थिति महान, जिसके पास ईश्वरीय खजाने बहुत हैं, उसे स्थूल खजाने स्वतः ही प्राप्त होंगे। भगवान के महावाक्य हैं। सवेरे उठकर रोज मैं 2-4 संकल्प सुना देता हूं और अपने मन में ये संकल्प करते ही रहना, सवेरे के अलावा भी, मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूं क्योंकि इस जन्म में भगवान का साथ मिला। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं। 3 संकल्प मैंने बताए केवल, आप इनका जादू देखना तो आप धन भी कमाओ, बहुत सुखों से रहो, बाबा की सेवाओं में भी लगाओ, पुण्य होता रहे, और भी किसी को मदद चाहिए उसको मदद कर दो, अपने परिवार को भी सुखी बनाओ। लेकिन ये अलौकिक सुख भी प्राप्त करेंगे तो एक बैलेंस, एक संतुलन रख के जीवन में चलेंगे। ज्ञान योग में आने का मतलब संन्यास लेना नहीं है। हमारा वैराग ऐसा नहीं कि हम कुछ ना करें, अब भगवान मिल गए बस हो गया काम पूरा। हमें बैलेंस लाना है जीवन में। लोग हमारे प्रभु मिलन को हमारे चेहरे से देखें, हमारे श्रेष्ठ भाग्य की महिमा करें, हमारे जीवन परिवर्तन का गायन करें, हमने जो प्रोग्रेस की उसको भी देखें कि जब से ये इधर आए हैं, ज्ञान लिया है, ये निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो भाग्य को अपना साथी बनाएंगे। गुह्य बात है ये। और यदि सवेरे उठते ही आप खुले मन से हाथ ऊपर करके, अगर छत हो तो छत पे चले जाना, मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूं, धनवान हूं, आपका सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा। विघ्न आते हो, मेरा जीवन संपूर्ण निर्विघ्न है, स्वयं भगवान विघ्नों को नष्ट करने वाला मेरा साथी है, विघ्न टलने लगेंगे। लेकिन ये बात खुले मन से करनी होती है, आधा मन है। छत न हो तो कमरे में ही कर लेना, कमरे के कमरा भी तो छत के नीचे ही होगा। छत तो होती है पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में छतें सबकी नहीं होती है। हाँ, बच्चे कहते हैं ना, खुद सोता ना सोने देता। नहीं, आप तो जगा करो पर बच्चों को सोने दिया करो। कई माताएं भी करती, अपने बच्चों को 4 बजे उठा देते, उठो जात करना है बाबा को, सोने नहीं दूंगी। फिर क्या होता है, बच्चे बेचारे दुखी हो जाते हैं। बच्चों को तो गहरी नींद तभी आती है, 4 बजे ही तो आती है गहरी नींद,
माँ से ही परेशान हो जाते,
तो माँ से दुखी हो जाते हैं और कहने लगते हैं छोड़ो तुम सवेरे सवेरे चल देती हो डायरी पेन लेके, हमें भी नहीं सोने देती हो, नहीं जाना है तुम्हें। तो थोड़ा संतुलन लाएंगे, बच्चों का परिवार का भी ध्यान देंगे। जो दूसरों का ध्यान देते हैं, ये राजाई संस्कार हैं, दूसरों का भी ख्याल करना। जो राजा ऐसे हुए हैं, प्रजापालक, सबका ध्यान रखते थे, वो सफल राज करके गए। और जो ऐसे हैं कि जो मैं चाहूं वही हो, जैसे आजकल भी हुए ना कई लोग, अब भी हो गए हैं अफगानिस्तान में, तो उनका राज ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि राज उनका ही चलेगा, प्रजा जिनसे संतुष्ट हो, जो सुख देते हैं। ऐसा राजा जो सुख नहीं देता, वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो हम भी दूसरों का ध्यान रखें।
बहुत सारे ब्राह्मणों के मन में एक जिज्ञासा है भाई जी, कि बाबा क्या तीसरा रथ ले सकते हैं?
नहीं ले सकते। उसने दो ही नंदीगण दो ही दिखाए हैं ना मंदिरों में, देखे, एक बड़ा एक छोटा, तीन नहीं। ये प्रैक्टिकल सच्ची यादगार है, इसलिए उसने अपने आने का पाठ समाप्त कर दिया है। तीसरे रथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आता रहेगा तो उसके बच्चे तैयार नहीं होंगे। जैसे आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो और आप खुद ही संभालो, चलेगा काम? बच्चे सीखेंगे ही नहीं। लेकिन आप बच्चों को देने लगो जिम्मेदारी, माल मंगाना उनका काम दो, यहां भेजना दूसरे का काम दो, अकाउंट रखना तीसरे का काम दो, तो बच्चे योग्य बनेंगे। और ये अच्छे बाप का संस्कार होता है कि बच्चों को योग्य बना देना। और मैं बाप बैठे हैं बहुत, आप सबको ये भी कह दूं, अपने परिवार में बच्चों का बंटवारा पहले से ही करके चलो। समझ रहे? ये नहीं कि आप उन्हें दे के अलग हो जाओ। मान लो आपको दुकानें हैं, बहुत बाप ने, बहुत फादर्स ने ये काम कर दिया है, बिजनेस है, चार बच्चे हैं, चारों को अलग अलग दुकानें खोल कर दे दी, बढ़ाओ अपना, मैं तुम्हारे साथ हूं, पैसा भी दिया, अब बढ़ाओ इसको अपना। बच्चे योग्य बन गए, बहुत अच्छा बिजनेस करने लगे, माँ बाप निश्चिंत रहे, और बाप के जाने के बाद कोई झगड़ा नहीं। तो झगड़े न हो संपत्ति के, इसका पहले से ही सबको ध्यान देना है। सब आप बुद्धिमान है, समझदार है, उसको यूज करना है।
मैं ज्ञान में बिल्कुल नया हूं और एक सवाट की माला में आना चाहता हूं।
बिल्कुल संभव है? आपका स्वागत है। बाबा ने कह दिया है पिछली मुरली में भी, डिक्लेयर घोषित हुए नहीं अभी, रतन दो ही हुए हैं, इसलिए जिसको आठ की माला में आना है, पहली शर्त है 8 घंटे योग, बैठ के नहीं, कर्मों में योग युक्त जीवन, वो भी जब तक आप रहेंगे जीवित तब तक करना है आपको, संपूर्ण प्योरिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त, उसके बिना कोई माला में नहीं आ सकता। तीसरा, कोई धारणाएं साथ ले ले, संतुष्ट आत्मा, सरलता, निरहंकारी, मैंपन का त्याग, शुभ भावनाएं, सबके लिए प्रेम वृत्ति, ये धारणाएं साथ लेकर चलेंगे तो आपको माला में आने से कोई नहीं रोकेगा। मैं एक महावाक्य सुनाया करता हूं बाबा का, अंत तक भी 2-3 सीटें खाली रखी जाती हैं। सभी ध्यान से सुन लो, जो भी आना चाहे, बिल्कुल एंड तक भी 2-3 सीटें खाली रखी जाएंगी। कोई भी तेज पुरुषार्थ करके दौड़ के बैठना चाहे तो उसके लिए सीट खाली है, जोड़ लगाएंगे अवश्य आ जाएंगे।
जी भाई जी, बाबा मिलन का डेट फिक्स किया जाता है, अभी नजदीक आने वाले हैं बाबा मिलन का डेट, और हम सब कहते हैं भाई बहनों की बाबा मिलन करने जाना है, लेकिन देखते हैं, हम सब वीडियो ही देखते हैं, जो नए लोग जो आते हैं उनको हम कैसे बताएं कि आज के दिन बाबा मिलन हो रहा है?
सच अनुभव तो ये है, क्योंकि जो 3 साल तक चला है ये प्रोग्राम, शायद फिर बीच में कोरोना में बंद हुआ था, वो दिन जो फिक्स किया जाता है, भले ही मुरली तो वीडियो से ही सुनते हैं, कई कहेंगे हम तो अपने घर ही सुन लेंगे, मंदिर भी तो दूर दूर बनाए जाते हैं, शिवलिंग तो घरों में भी रखे जाते हैं, मंदिरों में भी है, फिर भी लोग अमरनाथ जाते हैं ना, आतंकवादियों का डर भी रहता है, फिर भी सोचते हैं चलो यात्रा में मर भी गए तो श्रेष्ठ गति होगी, जाएंगे जरूर। क्यों? एक तो जब यहां आप आते हो तो शुरू से ही आपका मन ईश्वरीय तरंगों से ओतप्रोत होने लगता है। यहां आकर 5 दिन सुख मिलता है, तब प्रभु मिलन होता है। घर में वो नहीं होगा, घर में आप काम धंधे से 5 बजे आएंगे और जल्दी जल्दी नहा धो के बैठेंगे वीडियो सुनने, उससे कुछ नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, उस दिन बाबा विशेष अवसर दे देता है सबको मिलन का। और मैं बहुत उसे पूछता था जो मेरे पास आता था कि कल का दिन बाबा का मिलन हुआ, अगले दिन आते थे ना मिलने। मैंने कहा बाबा तो आए नहीं थे, मैं जानबूझ के प्रश्न करता था। सब कहते थे नहीं, हमें ऐसा लगा बाबा आए, हमारा मिलन हुआ, हमें वरदान मिले, दृष्टि मिली। इसलिए दूसरों को भी समझा सकते हैं ये बात, और खुद भी इसी भावना के साथ आएंगे। भावना यहां इंपॉर्टेंट है। अगर ये संकल्प रहा कि बाबा तो आता नहीं, बिना मतलब ऐसे ही प्रोग्राम बना देते हैं, भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं ये लोग भी, कई लोग और भी आगे शब्द बोल देते हैं, वो तो बोलने वाले बोलते ही हैं, वो तो हम लोगों को तो सुनने की आदत पड़ी हुई है शुरू से ही। इसलिए बहुत निश्चय बुद्धि होकर, संगम युग को वरदान है प्रभु मिलन का, मिलन अवश्य होता है उस दिन विशेष, इसलिए उसका फायदा उठाएंगे सभी।
एक प्रश्न है भाई जी कि हमारी जो वरिष्ठ दादियां अव्यक्त हुई, उन लोगों का हम अंतिम दिनों को देखते हैं कि बहुत सारी शारीरिक व्याधियों से गुजरना पड़ा, और बाबा का संदेश ये आता है कि ये सुख में रहते थे तो मौज में रहते थे। प्रश्न ये भाई जी कि अब जो उनको नया जन्म मिल गया, क्या नए जन्म में उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं हो रहा होगा?
मैं 2 महान दादी 3 के उदाहरण दे देता हूं आपको, जिन्होंने जिनको मैंने देखा इस तरह। दादी प्रकाशमणि, नो डाउट उन्हें कष्ट था शरीर का। दादी जानकी, उनको बचपन से ही दमा था, तो यहां की ठंडी उनको, और लंदन में भी गई वहां भी बहुत ठंडी, उनको बीच बीच में कष्ट देती थी। गुलजार दादी, नो डाउट उनको कष्ट हुए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन तीनों ने ही अपनी स्थिति को पहले से इतना अच्छा रखा था। आज का वरदान याद है, कर्म योग से आ गया ना याद। हम ऐसे कर्म योगी रहें, इस देह के मालिक बन कर रहें, इस देह से डिटैच होकर रहें, तो दर्द हमें दर्द फील नहीं होता। ये तीनों की स्थिति हमने देखी। दादी जानकी को देखा, तकलीफ होती थी बहुत, परंतु जल्दी ही नॉर्मल। दादी का बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है, अहमदाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में थी, सब लगाए हुए थे नाक पे कान पे, सब कहां कहां नलियां डाली हुई थी। दादी को ऊपर से प्रेरणा हुई, ये सब गलत है, मैं मधुबन चलूंगी, ठीक हो जाऊंगी, निकाल दिया आप ही, उठ गई, कहा साथियों को चलो मुझे मधुबन जाना है, डॉक्टर नाराज हुए और मधुबन आते ही ठीक हो गई। तो ईश्वरीय बल, उनकी अपनी स्थिति का बल, स्वमान का बल इन सब के पास था बहुत ज्यादा। देखने वालों को जरूर लगता था कि उन्हें कष्ट है, पर आत्मा इतनी डिटैच थी शरीर से कि दर्द की फीलिंग कम होती थी। ये मेरे अपने अनुभव भी बहुत हैं। मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, हॉस्पिटल में नहीं जाके रहा, बीमारियां तो कई आई, इधर उधर दर्द होते रहते हैं, यहाँ के क्लाइमेट के कारण भी और थोड़े भारी पानी के कारण भी। लेकिन मुझे ऐसी बैड फीलिंग दर्द की कि मुझे परेशानी हो रही है, बहुत पेन हो रहा, कभी नहीं होता। बाबा की मदद और अपना स्वराज्य अधिकारी का नशा, हम देह के मालिक, कर्मेंद्रियों के मालिक, प्रकृति के मालिक हैं। ये नशा हमें पेनफुल फीलिंग से मुक्त कर देता है। तो ये दादियां बहुत सारा हिसाब किताब चुक तू कर गई, बहुत सारा क्या सारा, इसलिए अगले जन्म में उनको कोई कष्ट नहीं। और गुलजार दादी तो उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि भगवान को के रथ बनी वो, और बाबा का रथ बनने पर उसने बहुत बड़ी कुर्बानियां की। आप कहेंगे क्यों, बड़े मजे की बात है भगवान किसी के तन में आए। एक सर्वशक्तिवान और प्रजापिता ब्रह्मा, दो महान शक्तियां जिसके तन में आएंगी उसके ब्रेन पर काफी इफेक्ट होने की संभावना भी रहती है। बाबा ने बल भी दिया लेकिन प्रैक्टिकल में इफेक्ट हुआ वो, इसलिए भगवान उनसे बंध गया था लास्ट समय में। वो कहती थी बाबा को, ये बाबा ने संदेश दिया, बाबा मुझे जितना चाहे कष्ट दे लो, मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए। बाबा ने उनकी इच्छा पूर्ण की है, और वही एक आत्मा है जो ब्रह्मा बाबा के पास फरिश्ते रूप में सुख संवतन में है। बाकी सबने जन्म लिया है, और नए जन्म में उन्हें कोई भी कर्म भोग का हिसाब किताब नहीं, उनका कर्मों का खाता वो यहीं चुकतू करके गई।
जी जी, देव आत्माएं जो त्रेता के अंत में आएंगी और द्वापर के प्रारंभ में, उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे। उनका जीवन कैसे था, कितने सुंदर सुंदर उनके महल थे, क्या होगा उस समय, क्या बहुत बड़ा विनाश होगा उस समय भाई?
आप सभी के प्रश्न सुन के मुझे बड़ा आनंद आ रहा, आज बड़े गहरे प्रश्न हैं। नहीं तो लोग यही पूछते, योग नहीं लगता, व्यर्थ बहुत चलता है, घर वाले तंग करते हैं। मैं भी उनके उत्तर दे दे के बोर हो गया था, इसलिए मैं आज कहा था प्रश्न उत्तर छोड़ो, वही वही प्रश्न आते हैं। लेकिन आपने प्रश्न गुहे पूछे, और भी हैं क्या?
जी जी,
टाइम हो रहा है ना, दो हैं बस, सुनो। अभी सतयुग से देवता जब नीचे उतरते हैं तो देह में रहती है ना आत्मा, देह के संपर्क में भी आती हैं, फिर धीरे धीरे देह के स्पर्श में आने लगती हैं, फिर धीरे धीरे त्रेता के 200-250 साल में लास्ट में उनके अंदर देहभान की फीलिंग होने लगती है थोड़ी थोड़ी। जो एंड में आए हैं वो आत्माएं हैं जो अब यहाँ एंड में आएंगी संगम युग के, बस मेरा बाबा कहेगी, थोड़ा सा योग लगाएंगी, बाबा को स्वीकार करेंगी, थोड़ा दिन पवित्र रहेंगी। उनकी पवित्रता संसार के लिए लाइट वाइट नहीं बनेगी, उनकी प्योरिटी थोड़ी सी जिसकी लाइट इतने दूर तक फैलेगी, इसलिए वो त्रेता के अंत में आएंगे। त्रेता के अंत में, एकदम अंत में, देहभान थोड़ा थोड़ा बढ़ने के कारण ये देवता विषय विकारों में गिर जाएंगे। इसकी शास्त्रों में भी चर्चा है, देवताओं की प्रारब्ध पूर्ण हो गई और वो गिर गए, वो नरक में गिर गए, उनका पतन हो गया। और जब देवता विकारों में जाएंगे, विकारों में ऐसा नहीं कि रोज जाएंगे, एक एक बार, तो प्रकृति प्योर से जो इम्प्योर बनेगी तो प्रकृति में विध्वंस हो जाएगा, एक विनाश हो जाएगा छोटा, और विनाश नहीं तो सोने के जो महल थे, देवताओं की जो सभ्यता थी, परम सुख और संपदा से भरपूर था भारत, वो जमीन में चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा रह जाएगा ऊपर, ये कारण बनेगा उनके पतन का।
जी, कई लोग पूछते हैं बाहर वाले कि आप लोग तो कहते हैं विनाश होने वाला है, विनाश होने वाले हैं, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग रिट्रीट सेंटर भी आप ही लोग बना रहे हैं, क्या रहस्य है?
जरूरी है, मान लो किसी को 10 दिन भी रहना हो और उसके बाद घर ना हो और बारिश हो रही हो, क्या चाहेगा वो? 10 दिन के लिए तो ठिकाना हो जाए, चाहेगा या नहीं चाहेगा? हर व्यक्ति को घर चाहिए। सेंटर्स जो बड़े बड़े बन रहे हैं उसके पीछे प्रभु प्लानिंग है, बहुत बड़ी सेवाएं होनी है। हर सेंटर में 2-2, 4-4, 5-5 हजार का हॉल चाहिएगा। अगर वो आत्माएं 2-5 साल भी राजयोग सीखेंगी तो उनको जगह नहीं चाहिए, बहुत लोग समर्पित होंगे, उनके रहने को भी जगह चाहिए। बाबा के सेंटर लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, इसलिए ये कार्य हो रहा है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। बाबा ने कहा जब विनाश होगा सबका ही होगा, परिवार वालों को भी कहा तुम्हें घर चाहिए, घर बनाओ, जब जाना होगा सबका जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तक हैं तब तक उसका सुख अवश्य लेना है।
लास्ट में आपके लिए व्यक्तिगत प्रश्न है भाई जी, कि जैसे भगवान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो किसी ने कहा है कि आपके पुरुषार्थ से और आपके ज्ञान से हमारा पुरुषार्थ बढ़ता भी और कम भी हो जाता है। आपने कहा था कि 2000 में विनाश हो जाएगा, तो बहुत तेज पुरुषार्थ किए, फिर कुछ नहीं हुआ तो कम हो गए। फिर आपने कहा था 2006 में श्री कृष्ण जन्म ले लेंगे, कुछ नहीं हुआ, फिर ढीले हो गए। फिर आपने कहा था 2011 में विनाश प्रारंभ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, फिर ढीले हो गए। अब लास्ट में एक डेट बताई दीजिए भाई
कि कब होगा। मैंने नहीं कहा था 2000 के विनाश की जो बात थी वो तो दुनिया में प्रचलित थी, साइंटिस्ट कह रहे थे, बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी भविष्यवक्ता कह रहे थे। नहीं हुआ तो आपको फायदा हुआ, बाबा तो पहले दिन से कहते थे अगली दिवाली नहीं आएगी। क्यों नहीं, क्यों कहा था ये? क्योंकि ये जो हमारी पुरुषार्थ की यात्रा है, संपूर्ण बनने की यात्रा, ये बहुत लंबी है, ये एक साल में पूरी नहीं हो जाती। इसलिए ऐसा कहकर बाबा ने हम सभी को तेज पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। जिनका तेज पुरुषार्थ कंटिन्यू रहा वो बहुत आगे निकल गए, और जो विनाश के आधार पर पुरुषार्थ कर रहे थे कि इसमें हो जाएगा उसमें हो जाएगा, वो ढीले हुए। इसलिए आपको ढीले नहीं होना है। वो बातें धीरे धीरे बाबा ने स्पष्ट की कि ब्रह्मा के 100 साल पूरे होंगे 2036 में। पहले क्या था कि ब्रह्मा के 100 साल हम दादाजी की आयु को समझते थे, फिर क्लियर हुआ ब्रह्मा की आयु है 100 साल, तो 2036 में पूरे हो रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा परम नाम जाएगी, फिर श्री कृष्ण बनकर जन्म लेगी, तो 2036 तक इस दुनिया में आप समझ सकते हैं अब क्या होगा। और 2030 तक ही बहुत ये धरा खाली हो जाएगी देवताओं के लिए, थोड़े थोड़े बचेंगे, फिर धीरे धीरे चलता रहेगा। भूकंप अर्थक्वेक्स बहुत आएंगे, क्योंकि सतयुग का सारा माल कहाँ है? नीचे, वो ऊपर आएगा फिर से। पहले ऊपर का माल नीचे गया था, अब नीचे का माल ऊपर है। इसलिए विनाश इसलिए रुका है क्योंकि हम सब रुके हैं। हम सब श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे, विनाश की तो तैयारी भी हो गई, और हर व्यक्ति पुकार रहा है हे भगवान ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसे समाप्त करो। और सब पुकारेंगे तब महाविनाश प्रारंभ हो जाएगा। ओम जन।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों से हम सबके प्रश्नों का जवाब दिए। 2 मिनट बाबा को याद कर।